What is up, everybody? This is Piyush Kukreja, and you're listening to The Piyush Kukreja Show. The Piyush Kukreja Show.
So guys, आज का एपिसोड होने वाला है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में. एग्जैक्टली आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हो. और मेरे साथ है नन अदर देन विराज कारवा, जिनको आप सब लोग जानते भी होंगे. काफी वेल नोन पब्लिक स्पीकर है, 20 साल से ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है. 20 साल से ज्यादा इज प्रैक्टिसिंग, इज बीन मोर देन 20 इयर्स इज प्रैक्टिसिंग पब्लिक स्पीकिंग, एंड आल्सो रैंक अमंग टॉप 20 पब्लिक स्पीकर इन सॉफ्ट स्किल ट्रेनर. आल्सो ही इज कनेक्ट, ही कंडक्ट्स लीडरशिप वर्कशॉप्स अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज इन इंडिया. आल्सो ही ट्रेन्स कॉर्पोरेट कंपनीज एंड देयर like employees how to speak well, how to be a good leader and things like that. Also, he's a co-founder of White Ladder and Open Brackets. So I think this introduction is enough for him. Words to kafi zyada hai, but I tried to keep it short for this man. Viraj Karra naam hi kafi hai, introduction ke liye zarurat hi nahi thi, fir bhi maine koshish ki introduction dene ke liye. So welcome to the show, Viraj. Mujhe kafi acha lag raha hai aapko show pe bula ke.
Thank you so much for having me over, Piyush. Meri khushkismati hai ki aapne mujhe show pe bulaya. हम बहुत टाइम से इसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली ये कोऑर्डिनेट हुआ और हम आज बात कर पा रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर.
थैंक यू, आई अप्रिशिएट, आई एम ग्रेटफुल कि आप शो पे आ रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनवाइट. यू आर यू नो वन ऑफ द टॉप स्पीकर्स और आज मेरे शो पे आ रहे हो. इट्स बीन ऑनर.
सो प्लेजर इज ऑल माइन.
थैंक यू. सो आई होप आई वाज एबल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अगर कोई चीज मैंने मिस कर दी होगी तो आप प्लीज फील फ्री टू ऐड.
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक इंट्रोडक्शन दिया. आपने मेन पॉइंट्स कवर कर लिए. सो 10 ऑन 10 फॉर योर स्पीकिंग कैपेबिलिटी.
ओह ऑसम, थैंक यू. स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव. ये एपिसोड में अगर सच बताऊं तो पर्सनली मुझे चीजें सीखनी थी आपसे जो आज हम सीखने वाले, डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग. बिकॉज आई एम लाइक प्रैक्टिस इन डिजिटल मार्केटिंग सिंस 3 इयर्स. आई एम लिटिल बिट गुड इन दैट. रोज मैं सीख रहा हूँ चीजें, बट पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज है जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई नीड टू इंप्रूव. लाइक आस्टम डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, जैसे यू नो टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, समटाइम आई गेट सेल्फ कॉन्शियस, नर्वस एंड लॉट ऑफ थिंग्स. नॉट ओनली मी जो डिजिटल इंडस्ट्री में, तो ये एपिसोड पर्सनली मेरा भी फेवरेट होने वाला है, जहाँ मैं बहुत चीज़ें सीखने वाला हूँ और स्पेशली लिसनर्स के लिए भी. या ऑसम. सो विराज, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग. दिस इज अ वेरी न्यू टर्म. पब्लिक स्पीकिंग सबने सुना है, पब्लिक स्पीकर सुना है, बट वॉट एग्जैक्टली इज डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग? वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन नाउडेज?
So, पीयूष, आप देखें, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं. ये एक जूम कॉल के माध्यम से बात हो रही है. तो पहले जमाने में आपके पास सिर्फ, पहले जब मैं पहले जमाने की बात कर रहा हूँ, मैं आज से कोई 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 5-7 साल पहले तक भी अगर आपको ये पूछा जाता कि अगर आपको 100 लोगों से बात करनी है तो आप कैसे करेंगे, तो एक फिजिकल वेन्यू ही ध्यान में आता. होता है कि आप किसी क्लासरूम में जाके या किसी स्टेज या किसी ऑडिटोरियम में जाके 100 लोगों से बात करते हैं. आज आपको और मेरे को मालूम है कि हम सब कुछ ऐसे जूम कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसे वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या कुछ ऐसे वेबिनार फैसिलिटेट कर रहे हैं जहाँ पे 400-500 लोग एक साथ दुनिया भर से आके हमारे साथ बात कर सकते हैं. तो आई थिंक सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि आज वेन्यू डिपेंडेंट बातें नहीं रह गई, मीडियम डिपेंडेंट बन गई है. So venue क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मीडियम क्या है शायद उससे थोड़ा फर्क पड़े. तो डिजिटल का आई थिंक सबसे ठीक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन को एनहेंस करने के लिए आज शायद पूरी तरीके से हो रहा है. और ये पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी हो रहा था. आई थिंक ये जो पिछले 2 महीने हैं, ये जो गए 2 महीने हैं जब से ये वर्क फ्रॉम होम कोविड की वजह से हुआ है, ये सिर्फ 10 गुना और मल्टीप्लाई हो गया है. तो जो चीजें शायद 5 साल लगते होने में, अब वो 3-4-5 महीने में हो रही है. बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने आज से पहले कभी डिजिटली कम्युनिकेशन नहीं करी थी, अब वो पहली बार जिंदगी में डिजिटल कम्युनिकेशन कर रही हैं. बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद के काफी सारे पीयर्स हैं जो कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, जिन्होंने आज से पहले कभी डिजिटल पे पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी थी, पर आज डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग के मौके और डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी और डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत शायद पहले से बहुत ज्यादा है. क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटी और ये मीडियम फिजिकल मीडियम से बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो, तो इसलिए डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग आई थिंक आज की डेट में बहुत क्रिटिकल स्किल है. आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक कंपनी में वर्किंग एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप जो मर्जी हो, पर आज अगर आपको अपनी बात 100 लोगों के सामने रखनी है तो डिजिटल एक ऐसा मीडियम है जो शायद 4 गुना ज्यादा इस्तेमाल होगा किसी भी और फिजिकल मीडियम के कंपैरिजन। तो इसलिए डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग
ऑसम, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट भी लगा मुझे डिजिटल स्पीकिंग, ताकि जैसे कि आपने बोला कि पहले लोग ऑफलाइन करते थे और अभी COVID-19 वैसे 2-3 महीने में सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और सो डिजिटली कनेक्टेड है, बाहर जाना अलाउड भी नहीं, स्पीक इवेंट्स भी नहीं हो रहे, सो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्पीकर्स एज वेल, की और स्पीकर्स और जो नॉन स्पीकर्स है डिजिटली इजीली सबसे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि वेबिनार्स के थ्रू 500 लोगों से 1000 लोगों से वर्क ऑनलाइन वेबिनार्स के थ्रू एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऑसम, सो अगर किसी को डिजिटल स्पीकर बनना है तो हाउ कैन वी सब बन अ डिजिटल स्पीकर, पहला स्टेप क्या होना चाहिए उनका?
आई थिंक पहले दो स्टेप्स, सिर्फ एक नहीं, मैं दो स्टेप्स की बात करूंगा। सबसे पहला स्टेप आपके माइंड में है, आई थिंक माइंड में एक ये चीज उतरना के जो आप अब करने वाले हो वो जो पहले आप करते थे उससे बहुत अलग होगा, इस बात को ठीक से अपने दिमाग में बिठा लेना शायद सबसे पहला स्टेप होगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार मैं तो पब्लिक स्पीकिंग सालों से कर रहा हूं तो इसमें कौन सी नई बड़ी बात है, सिर्फ कैमरा ऑन करना है, लैपटॉप ऑन करना है और कनेक्ट का बटन दबाना है और बात करना शुरू कर देना है। पर हमारे को अपना को दिमाग में, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप, कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि जो हम फिजिकल मीडियम के थ्रू पब्लिक स्पीकिंग किया करते थे उसके कंपैरिजन में डिजिटल के रूल्स थोड़े से अलग हैं। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस बात को माने, और दूसरा फिर ये है कि इन रूल्स को समझें, इनको अपनाएं और इनको अपने फेवर में यूटिलाइज करें, ताकि ये प्रॉब्लम या चैलेंज ना बन जाए बल्कि आपके लिए एक लेवरेज बने। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप डिजिटल पे कर सकते हो जो आप फिजिकल में नहीं कर सकते थे। अगर उसकी आपको अवेयरनेस हो तो इन एनी केस आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी और एबिलिटी और बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। सो दीज आर द फर्स्ट टू स्टेप्स, वन इन द माइंड टू अंडरस्टैंड के एक फर्क है फिजिकल और डिजिटल में, दूसरा इस फर्क को अपनाना, ये दोनों चीजें आई थिंक इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट।
That's great. कि पहले हमको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, दिस इज नॉट अ ऑफलाइन स्पीकिंग, दिस इज अ डिजिटल स्पीकिंग माइंडसेट, और हमको एक्सेप्ट करना है कि दिस इज अ डिजिटल स्पीकिंग और उसके हिसाब से हमको काम करना है उसके हिसाब से, बिकॉज इसमें कैसा होगा वेबिनार पे 500 लोग है तो आपको दिख नहीं रहे वो, पब्लिक स्पीकिंग में हमको दिख रहा है ऑफलाइन, और इसमें दिखते नहीं तो अलग कनेक्शन होगा। सो कमिंग टू दिस, जैसे आपने बोला उसमें कम्युनिकेशन अलग होगी, सो एक स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग जब हम बोलते हैं whether it's digital or offline, mostly let's talk about digital. तो उसमें क्या क्या चीजें, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लाइक क्या क्या चीजें काम में आती है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए?
आई थिंक तीन चीजें हैं जो हमारे को याद रखनी चाहिए डिजिटल को लेके। एक तो ये कि डिजिटल में आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का मौका बहुत कम टाइम के लिए मिलता है। ऑफलाइन में ये बोला जाता था कि चाहे आप इंटरव्यू में बात कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हो, या एक स्टेज पे एज अ कोच या एक ट्रेनर बात कर रहे हो, या कहीं पे कीनोट स्पीच दे रहे हो, तो आपको 30 सेकंड का टाइम होता है अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए। और ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो टिकटॉक की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, लाइव स्टोरीज की दुनिया है, इसमें तो फॉर्मेट ही 14 सेकंड के रह गए हैं, 20 सेकंड मैक्सिमम। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफलाइन में 30 सेकंड में बनता है वो आपको 3 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर बनाना पड़ता है डिजिटल में। तो सबसे बड़ा फर्क तो ये है, आई थिंक इन डिजिटल ये जो सबसे पहली बात है हमारे को याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसका मौका आपको सिर्फ 3 से 15 सेकंड तक का है जिसमें आपको इसको पूरा करना है। उसमें आप खरे उतर गए तो लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर आप उसमें खरे नहीं उतरे तो लोग आपको स्वाइप कर देंगे या उस वेबिनार की विंडो को छोड़ के कोई और विंडो मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो एक तो ये कि फर्स्ट इंप्रेशन जल्दी बनाना है, दूसरा छोटी बातें, यू नो दे से दैट बेसिक्स मेक ऑल द डिफरेंस, बेसिक्स मेक अ मैन, एंड आई थिंक बेसिक्स में जैसे अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि जब आपको 500 श्रोतागण के साथ बात करनी है या 500 दर्शकों के साथ बात करनी है एक लाइव एनवायरनमेंट में, तो आपको उनके पास तक जाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर लाइव स्टेज पे बात करता हूँ तो मैं स्टेज से उतर के ऑडियंसेस के बीच में चल के जाता हूँ ताकि मैं उनके और पास जा पाऊँ। जितना आप उनके साथ अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ाएंगे उतना आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। फिर आई कॉन्टैक्ट की बात आती है कि 500 लोग हैं तो आपको 500 लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। पर जैसा आप ठीक कह रहे थे कि वेबिनार में तो अगर 500 लोग हैं तो वो आपको दिखाई तो दे नहीं रहे, और जो दो चार शक्लें आपको दिखाई भी देती हैं वो आपके स्क्रीन पे होती हैं। तो एक बेसिक जो बहुत लोग भूल जाते हैं वो ये है कि अगर आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है तो आई कॉन्टैक्ट जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसके साथ नहीं बनाना, आई कॉन्टैक्ट आपको कैमरा के साथ बनाना है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये चीज मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि आई कॉन्टैक्ट वेबिनार में तो कैमरा के साथ आई कॉन्टैक्ट। और एक बार वो बात आपको समझ में आ जाए कि आपको स्क्रीन के साथ नहीं, अभी मेरे को जो स्क्रीन पे पीयूष दिख रहा है मैं उसके साथ आई कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, बट पीयूष के लिए मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा, पीयूष के लिए मैं कहीं और ही देख रहा हूँ। सिर्फ अगर मैं कैमरा में देखूंगा तो आई कॉन्टैक्ट पीयूष के साथ होगा। पर अगर ये एक छोटी सी चीज भी क्लियर हो जाए तो 500 लोगों के साथ आपके आई कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो लाइक सर छोटी छोटी चीजें हैं, ये सिर्फ एक उदाहरण था कि मैं आपको जैसे भी कुछ देर पहले बोल रहा था कि डिजिटल एक्चुअली फिजिकल के मुकाबले में कई तरीकों से ज्यादा इफेक्टिव है। फिजिकल में आपको 500 लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, डिजिटल में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मुझे कैमरा के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है। वो अगर आपने बना लिया तो आपका आई कॉन्टैक्ट 500 लोगों के साथ बन जाएगा। Right. So second is this, the basics. And third, which is very, very important when it comes to digital public speaking, is to understand कि जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, and as a trainer मुझे आदत है कि एक क्लासरूम सेशन 8 घंटे का होगा या मेरा एक सेमिनार 2 दिन का होगा, और हमारे को वेबिनार पे अपना को ये याद दिलाना है कि लोगों के अटेंशन स्पैन्स ऑनलाइन मीडियम में इस माध्यम के थ्रू इतने कम होते हैं कि जो चीज हमको लगता है कि हम 2 घंटे में कर पाएंगे वो एक्चुअली हमारे को याद रखना चाहिए कि हम उसमें आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं रख सकते। सो 1/4 इज द अटेंशन स्पैन एंड द पेशेंस व्हेन इट कम्स टू डिजिटल। तो 1/4 काम आप एक टाइम में पूरा कर सकते हो। अगर 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का वेबिनार है, 2 घंटे की ट्रेनिंग है, तो उसको आप 4 सेशंस में ब्रेक करें ताकि वो एक स्ट्रेच पे 30 या 35 मिनट से ज्यादा का ना हो। तो दैट्स द थर्ड थिंग टू कीप इन माइंड दैट द पेशेंस, मैं उसको डिजिटल पेशेंस बोलता हूँ, डिजिटल पेशेंस आई थिंक फिजिकल पेशेंस के मुकाबले में 1/4 है। सो दीज आर 3 बिग थिंग्स टू कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू मी। जस्ट क्विकली समिंग अप, थोड़ा लंबा आंसर हो गया। एक तो ये कि आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन 3 सेकंड से 15 सेकंड के अंदर बनाना है। दूसरा कि आपको बेसिक्स, जो डिजिटल के बेसिक्स हैं, उनको ठीक तरीके से समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टैक्ट हैज टू बी विद द कैमरा। एंड तीसरा कि कहीं ना कहीं हमारे को अपने आपको ये याद दिलाना है कि जो काम हम 2 घंटे में फिजिकल मीडियम में कर सकते हैं वो काम आधे घंटे में होना पड़ेगा एक डिजिटल मीडियम में। 1/4 इज द डिजिटल पेशेंस।
तो ये 3 चीज़ें जो आपने बताई काफ़ी मुझे पर्सनल लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ तो है आपने बोला कि जब भी हम फिजिकली ऑफलाइन इवेंट्स करते हैं तो 30 सेकंड्स एक टाइम होता है जब हमको इंप्रेशन देना फर्स्ट, बट ऑफलाइन ऑनलाइन में डिजिटली तो आपने बोला जैसे टिकटॉक इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के वैसे अटेंशन स्पैन थोड़ा कम हो गया और हमको पहले 3 सेकंड से लेकर 15 सेकंड के बीच में ही उसके अंदर ही हमको अटेंशन गेन करनी है, फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है। सो इससे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम 3 से 15 सेकंड के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाए। लाइक कोई एक या दो टिप्स आप देना चाहो कि हम 3 या 15 सेकंड के अंदर वो फर्स्ट इंप्रेशन बना ले।
राइट, सो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला रूल है पीयूष, मेरे हिसाब से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में सेम है। ओनली थिंग इज कि ऑफलाइन में अगर इस रूल में आपने थोड़ी सी ढील छोड़ भी दी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऑनलाइन में आपको इस रूल में बिल्कुल कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आपको ये रूल एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो 3 चीजों से बनता है। पॉइंट नंबर 1 कि आपना आपका पहनावा क्या है, आपकी पैकेजिंग क्या है, व्हाट आर यू वेयरिंग, दैट इज योर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। वीडियो में इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, ऑनलाइन में इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। वो सिर्फ ये नहीं हो जाता कि आपने क्या पहना हुआ है, तो वीडियो में आपका जो फ्रेम है वो भी आप ही की पैकेजिंग है। तो आपकी फ्रेम की पैकेजिंग और आपकी अपनी पैकेजिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन। योर सेकेंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप एक इंसान को एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखें और उस वीडियो में ऐसा लगे कि वो वीडियो नहीं है, एक स्टैटिक पोस्ट है, क्योंकि इंसान हिल ही नहीं रहा, फ्रेम में कुछ हिल ही नहीं रहा, तो फिर वो वीडियो हुआ कैसा?
Exactly.
So, चाहे वो वेबिनार हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो, आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, द एक्शन विद इन दैट फ्रेम हैज टू कम इन टू प्ले. अगर आप देखें तो जब मैं बात करता हूँ तो मेरे हाथ हिलते हैं. आप भी जैसे अभी बात नहीं भी कर रहे तो मुझे एक्नॉलेज करने के लिए अपना सर हिला रहे हैं. तो जब आपका ये सर हिलता है तो उससे मुझे पता लगता है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको सुन भी रहे हो, आपको समझ भी रहे हो. तो ये बॉडी लैंग्वेज है. एंड बॉडी लैंग्वेज इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेकिंग अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको ये याद दिलाता रहता हूँ कि हमारे अभी वाले प्रधानमंत्री और हमारे पिछले प्रधानमंत्री में एक जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि हमारे अभी वाले प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो उस शब्दों में जान डाल के बोलते हैं. तो वो जो आपका, सो दे से दैट इन पब्लिक स्पीकिंग इट इज नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट. तो आपने क्या बोला उसका फर्क कम पड़ेगा, पर आपने उसको कैसे बोला उससे बहुत फर्क पड़ेगा. सो आपके फर्स्ट इंप्रेशन का थर्ड पार्ट ये है, वॉइस मॉड्यूलेशन. आपको अपनी आवाज में एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, इमोशन डालना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा, उसमें वैरायटी डालनी पड़ेगी. और जितना आपकी आवाज में वैरायटी होगी उतना सॉलिड आपका इंपैक्ट होगा. सो दैट्स व्हाट गोज इनटू योर फर्स्ट इंप्रेशन, वेदर यू आर स्पीकिंग, चाहे आप डिजिटली बोल रहे हो चाहे आप फिजिकली बोल रहे हो, ये तीन इंग्रेडिएंट्स आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं. पर ये आपको याद रखना है कि फिजिकल स्टेज पे कभी कभी ये तीनों इंग्रेडिएंट्स में एक इंग्रेडिएंट अगर थोड़ा कम पड़ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा. पर डिजिटल में क्योंकि आपको उतना कम टाइम मिल रहा है अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए, तो ये तीनों चीजें एक साथ काम करना उतना ज्यादा जरूरी है. सो दैट्स द साइंस फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन. पीयूष,
ऑसम, काफी अच्छी चीजें बताई. तो इस आंसर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जैसे लास्ट चीज आपने बताई जो कि है वॉइस मॉड्यूलेशन. तो इसमें लाइक काफी लोग, यू नो, वॉइस मॉड्यूलेशन काफी ऐसा टॉपिक है जो लोग सब लोग कवर नहीं करते. लाइक वो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है पब्लिक स्पीकर में, जैसे स्पेशली टॉप पब्लिक स्पीकर लाइक यू. सो वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, और जो बात करने की स्पीड होती है, आई डोंट नो इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलेंगे क्या, जैसे बात करने की स्पीड होती है, कुछ वर्ड्स फटाफट निकलते हैं कुछ स्लो, स्पीड कितनी होनी चाहिए, और वॉइस मॉड्यूलेशन के आपके क्या टिप्स होंगे, हाउ टू इंप्रूव आवर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड द वे वी स्पीक.
तो पीयूष, दो बातें याद रखनी पड़ेंगी. एक तो ये कि वॉइस मॉड्यूलेशन भी एक साइंस है. इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन के 7 टुकड़े हैं. जब ये 7 टुकड़े एक साथ जुड़ते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन बनता है. तो ये कोई एक आध दो चीजें नहीं है, ये 7 चीजें हैं जिनको एक साथ आना होता. तो पहली बात तो ये है कि देयर इज अ साइंस एंड देयर आर 7 पार्ट्स टू वॉइस मॉड्यूलेशन. दूसरी चीज जो हमें याद रखनी हुई रखनी है कि ये 7 पार्ट्स थ्योरेटिकली सीखना बहुत आसान है, पर इसको अपना कर अपना बनाना उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. जो बहुत सारे लोग नहीं करते वो ये नहीं करते कि उसको आदत बनाने में जो 21-22 दिन लगते हैं वो टाइम नहीं देते. लोग 6-7 दिन कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा, इसके बिना भी काम तो हो रहा है ना, काम चला लो. पर आपको ये याद रखना है कि अगर आप 21-22 दिन तक रोज इन 7 चीजों को अपने अपने बिहेवियर में डालें तो आपको दिखाई देगा कि 23वें दिन से 24वें दिन से वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा. सो दीज आर टू थिंग्स टू रिमेम्बर दैट यस देयर आर 7 पार्ट्स टू इट. टू यू विल हैव टू गिव इट एटलीस्ट 20-25 डेज ऑफ हार्डकोर प्रैक्टिस in order for it to start showing the difference. तो अब ये 7 चीजें शायद हम इस पॉडकास्ट में पूरी तरीके से नहीं कवर कर पाएंगे, पर मैं आपको उदाहरण के तौर पे, आप स्पीड की बात कर रहे थे, तो स्पीड की बात करते हैं. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टाइम कम है तो जल्दी बोल लो. जैसे आपका पॉडकास्ट का भी एक टाइम लिमिट है, तो लोगों के दिमाग में एक टाइम लिमिट चलता है. उन्होंने लगता है कि क्योंकि टाइम लिमिट कम है और मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है तो मैं जितना जल्दी बोल पाऊं उतना जल्दी बोल लेता. या कई बार कुछ लोगों को सबकॉन्शियसली ये लगता है कि यार मेरी बात कोई बहुत जरूरी नहीं है, इसको जितना जल्दी बोल के खत्म कर लूं उतना अच्छा है. बट जो दुनिया के सबसे माहिर स्पीकर्स हैं, आप चाहे जॉन एफ कैनेडी की बात करें, मैल्कम एक्स की बात करें, ओबामा की बात करें, इंडिया में नरेंद्र मोदी की बात करें या आप शाहरुख खान को कभी स्पीच देते हुए सुन लें या आप कभी ओफ्रा विनफ्री की स्पीच सुन लें, ये जितने भी जाने माने स्पीकर्स हैं और सिर्फ एक दो चार पांच नहीं, आई विल से 100 ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, उन सब में एक चीज कॉमन है कि जब वो अपनी कोई बहुत क्रिटिकल बात बोल रहे होते हैं तो उसको जल्दी बोलने की जगह उसको स्लोली बोलते हैं, उसको धीरे बोलते हैं। मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेट ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं। तो रेट ऑफ स्पीच फॉर पब्लिक स्पीकिंग शुड एक्चुअली बी 20% स्लोअर देन योर रेगुलर रेट ऑफ स्पीच। दो लोग आपस में एक इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, इसमें जो रेट ऑफ स्पीच है उससे कोई 20% कम आपकी रेट ऑफ स्पीच होनी चाहिए अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं। जितनी आपकी रेट ऑफ स्पीच संभलेगी, जितना आप अपनी बात को बोलने में टाइम लगाएंगे, उतना ज्यादा अगले इंसान को टाइम मिलेगा उस बात को समझने का। और जितना ज्यादा अपनी बात को टाइम लगा के बोलेंगे उतनी, क्योंकि आपने अपनी बात को इंपॉर्टेंस दी तो उतनी ही इंपॉर्टेंस अगला इंसान आपको देगा। तो ये जो 20% वाला रूल है ये ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में ये 30-35% कम होगा। तो अगर आपका रेगुलर रेट ऑफ स्पीच 250 words per minute है तो ऑनलाइन आपका रेट ऑफ स्पीच 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेट ऑफ स्पीच 200 है ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में आपका रेट ऑफ स्पीच 175 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर बेसिकली आई थिंक हमको अपने आप को याद ये दिलाना है कि जल्दबाजी ना करें। आप किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को देखें, किसी भी अच्छे स्पीकर को देखें, कबीर बेदी को याद कर लें, ओम पुरी को याद कर लें, किसी को भी याद कर लें, यू विल ऑलवेज सी अपने हर शब्द को उसकी इंपॉर्टेंस देके, हर शब्द को ठीक से बोलते हुए वो आगे निकलते हैं। तो हर मोती को बना के एक माला बनेगी, हर बूंद को बना के एक सागर मिलेगा। तो वो बूंद और वो मोती, हर शब्द जरूरी है, तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस दें। तो ये तो सिर्फ एक रूल है, लाइक आई सेड ऐसे 6 rules और हैं। जब ये 7 rules एक साथ आते हैं तो फिर वॉइस मॉड्यूलेशन बनता है। और इन रूल्स में कुछ रूल्स हैं कि आप कब अपनी बात को जोर से बोलते हैं, कब उसको धीमा लेके जाते हैं। कई बार जब अपनी बात को धीमा करके बोलते हैं तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, पर कभी कभी उसको ऊपर बढ़ा के इम्पैक्ट आप डबल कर सकते हैं। तो जो फ्लक्चुएशंस हैं, दैट इज रूल नंबर 2, विच इज द वॉल्यूम फ्लक्चुएशन। एंड लाइक आई सेड, ऐसे कोई 5 rules और हैं, पर आई थिंक आपके ऑडियंसेस के लिए, आपके श्रोताजनों के लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी आवाज नेचुरली चाहे कैसी भी हो, आप वॉइस मॉड्यूलेशन सीख के उसको स्पीकिंग वॉइस बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग वॉइस बोलते हैं, अपनी पब्लिक स्पीकिंग वॉइस का प्रोजेक्शन बदल सकते हैं। वो टोटली आपके हाथों में है, थोड़ा उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ता है, पर वो एफर्ट का जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई है और वो बहुत विजिबल है। ऐसा नहीं है कि हवा में बात है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट कुछ दुनिया के बहुत जाने माने स्पीकर्स हैं, अगर आप उनकी पहली स्पीचेस सुने और आपकी स्पीचेस सुने तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग के कारण उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव हुई है। तो हर इंसान अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव कर सकता है, उसमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जरूरी।
Awesome. तो काफी अच्छी चीज बताई आपने कि वॉइस मॉड्यूलेशन में, जैसे आपने बताया कि अगर हम ऑफलाइन बोल रहे हैं तो 20% कम होना चाहिए स्पीच ऑफ रेट, और अगर ऑनलाइन बोल रहे हैं 30-35%। तो जैसे कि आपने बोला इसमें और बहुत सारी चीजें होती इंप्रूवमेंट की, 5-6 चीज आपने, 7 चीजें होती टोटल, आपने एक और दो एग्जाम्पल दिए। तो वॉइस मॉड्यूलेशन लाइक आपने बोला इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ कोई आप एक टिप शेयर, आई नो कि काफी लंबा हो जाएगा वो, एक टिप। हाँ, बिफोर शेयरिंग दैट, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विराज का फ्री वेबिनार भी होता है जो आप अटेंड कर सकते हो, जहाँ पे वो पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। मैंने इनका वेबिनार अटेंड भी किया था, काफी इन्फॉर्मेटिव था, इससे रिलेटेड टॉपिक थे उनमें कि 3 I's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्या है, क्या क्या चीजें होती है वॉइस मॉड्यूलेशन। तो फ्री वेबिनार है, राइट विराज, फ्री वेबिनार है, तो जी अटेंड कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी होंगे, जरूर उसको अटेंड कीजिए। अगर आपको 7 चीजें जाननी है और भी न्यू चीजें जाननी है, एडवांस चीजें विद प्रेजेंटेशन, तो आप वो वेबिनार जरूर अटेंड करो। मैंने खुद ने अटेंड किया था, सो इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड आल्सो। सो हाँ, मैं मेरे क्वेश्चन पे आता हूँ। जो था कि इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एक टिप लाइक किसी किसी को कैसा होता है, जैसे कि मेरा भी कुछ मैंने सुना था कहीं, इंसान का बोलने का स्पीड फास्ट होता है पर सुनने का स्पीड कम होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। आई एम नॉट श्योर कितना सही, मैं यूट्यूब पे वीडियोस कभी कभी देखता हूँ क्योंकि मैं ऑफ टॉपिक कभी कभी इम्प्रूवमेंट के लिए कि मैं पॉडकास्ट में और क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ। लाइक मेरा भी मैं मानता हूँ कि और बहुत लोगों का कि बहुत फास्ट बोलते हैं सबकॉन्शियसली, जानबूझ के भी नहीं बट आदत होती है एक फास्ट की, तो इस आदत को हम कम कैसे करें, लाइक स्लो बोलने की आदत जो आपने बोला।
तो पीयूष आपका लास्ट स्टेटमेंट उठाते हैं, आपने पूछा कि इस आदत को चेंज कैसे करें।
जी,
एक तरीका है इसको बोलने का कि इस आदत को चेंज कैसे करें, दूसरा ये है कि इसको हम बोले इस आदत को, क्योंकि ये जो इस आदत है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, इस आदत को चेंज कैसे करें। तो आपने किया क्या, आपने अपना सेम स्टेटमेंट उठाया पर उसके अलग अलग शब्दों में अलग अलग इमोशन डाला। तो एक ये चीज अगर हम सब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि हम जो भी बोलने वाले हैं उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखें कि कौन सी जगह पे कितना इमोशन डालने से वो थोड़ा स्लो डाउन भी होगा और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। सो आई एम सेइंग दैट अगर एक मैं आपको टिप दूं जिससे सबका फायदा होगा तो वो टिप ये होगा कि आप जो भी लाइन बोलने वाले हैं अपने आप को याद दिलाएं कि इस लाइन के हर शब्द में एक अलग इमोशन डाला जा सकता है। आप देखें ना कि अगर मैं बोलूं कि ये फोन मेरा है, एक तरीका है ये बोलने का, दूसरा है बोलने का ये फोन मेरा है, राइट। दोनों एक ही चीज है पर मतलब बदल जाता है क्योंकि जहां मैंने ये पे स्ट्रेस डाला तो उसका मतलब है कि ये वाला फोन मेरा है, दुनिया का हर फोन मेरा नहीं है।
अच्छा,
अगर इसी सेम चीज को मैं बोलूं कि ये फोन मेरा है तो जहां मैंने मेरा पे स्ट्रेस डाला तो वो क्वेश्चन बन जाता है कि ये फोन मेरा ही है ना। सो व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं एक ही शब्द को अगर तीन अलग अलग इमोशंस के साथ स्ट्रेस करूं तो उस पूरे शब्द का मतलब बदल जाता है। तो अगर हम अपने आप को याद दिलाते रहे कि मेरे को हर शब्द में इमोशन डालना है, अब मैं बोल सकता था ना हर शब्द में इमोशन डालना, पर हर शब्द में इमोशन डालना है तो हर वर्ड को एक इमोशन के साथ प्रोनाउंस करने की अगर हम आदत डालना शुरू करें तो कई हद तक हम स्लो भी हो जाएंगे और हमारा इमोशन अपनी स्पीकिंग में जो इमोशन चाहिए वो भी बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पर पीयूष इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है जो हम में से अधिकतर लोग नहीं करते और दुनिया के सारे बड़े स्पीकर्स करते हैं वो ये है कि आप जो भी बोल रहे हो, जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, आप जब इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग कम से कम चार लोगों को दिखाऊंगा और उनको बोलूंगा कि यार ये जो मैंने आज बोला ये और बेहतरीन कैसे हो सकता है, मेरी आज की गलतियां क्या रही। और मैं ऑब्वियसली ये सिर्फ उन ऐसे चार लोगों को दिखाऊंगा जिनका एक्सपर्टीज या जिनकी क्रेडिबिलिटी इस टॉपिक को लेके या इस स्किल को लेके अच्छी है। क्योंकि जो हम गलतियां कर रहे होते हैं वो हम अपने आप नहीं देख सकते। अगर हम अपनी गलतियां अपने आप देख पाते होते तो हम करते क्यों। तो बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग में स्पेशली ऐसी गलतियां होती हैं जो हम खुद नहीं पकड़ पाते। जब कोई इंसान जो उस स्किल में माहिर है वो हमें बताए कि यार गलती यहां हुई, ये वाला शब्द जो है, ये वाला जो सेंटेंस है इसमें तेरा इमोशन गिरा, इसमें पढ़ना चाहिए था, तुझे लगा कि तू स्लो बोल रहा है पर तू स्लो बोला नहीं, तू तो एक्चुअली बहुत जल्दी बोल गया। तो ये कोई थर्ड पार्टी ही आपको बता पाएगा। सो इवन फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन माय नेक्स्ट टिप इज दैट यू नीड टू हैव समबडी हु इज गिविंग यू अनबायस्ड फीडबैक एंड सजेशन एवरी टाइम यू टॉक। तो वो इंसान आपकी जिंदगी में होना जो काम आप एक साल में कर पाओगे वो काम आप 10 दिन में कर पाओगे अगर आपके पास एक थर्ड पार्टी इनपुट हो। If you think you have a friend who can do this for you, great. You could have a colleague who can do this for you. हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये कर पाए, आपके घर पे आपके भाई बहन हो जो ये कर पाए, पर ये इंसान होना ऐसा चाहिए जिसका पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपको पता है कि अच्छा है, माना हुआ है, जाना हुआ है। तो ये फीडबैक बहुत जरूरी है।
तो तो बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए, ये पॉडकास्ट तो लिटरली पर्सनली मेरे लिए भी बहुत वैल्यूबल हो रहा है। काफी चीजें जो मैं नोट कर रहा हूँ बिहाइंड माय माइंड की ये चीजें, मैं खुद इसको फिर से सुनूंगा और नोट्स भी लेने वाला हूँ इस एपिसोड के। एंड ऑल्सो आपने और एक चीज शेयर की थी, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन तो आपने बताया, नेक्स्ट चीज आपने शेयर की थी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पे आने से पहले मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि कभी कभी वेदर वो ऑफलाइन में पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं अभी डिजिटली कर रहे हैं, समथिंग कॉल्ड नर्वसनेस, सेल्फ कॉन्शियस कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये लाइक बिगिनर्स में काफी होती है। सो आई डोंट नो, शायद आपको भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा, तो इसको कैसे हम वो कर रहे हैं अवॉइड, लाइक सेल्फ कॉन्शियसनेस, बीइंग नर्वस और फंबलिंग और इस चीजों से कैसे, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर दिस?
पीयूष, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको बोल सकता हूँ कि इन सब चीजों के कोई ना कोई तोड़ है, पर एक्चुअली ऑनेस्टली वो सारे तोड़ जो है वो सिर्फ तभी काम आते हैं जब पहला मूव आपकी तरफ से ऑनेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो। तो जितने भी दुनिया भर के स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सेंटरिंग योरसेल्फ, ये बहुत सारी तरीके हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, पर मैं कहता हूं कि ये फिर भी स्टेप टू है। जो स्टेप वन ऑफ कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर से ही आएगा, वो कहीं बाहर से आ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको तैराकी सीखनी है, आपको स्विमिंग सीखनी है, तो पूल में उतरना तो पड़ेगा। आप एक बार पूल में उतर गए, उसके बाद डूबना कैसे नहीं है वो आपको कोच सिखा सकता है, पर आपको पूल में धक्का देके उतारने से आपको स्विमिंग आ जाएगी, शायद वो ठीक तरीका नहीं है। तो जो पहला पुश है वो तो आपकी तरफ से खुद आना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहता हूं कि मुझे डरने, डूबने का डर ना लगे, पर मैं वो पूल में उतरे बिना करना चाहता हूं, तो वो तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं ये याद दिलाना पड़ेगा कि हर इंसान पैदाइशी कॉन्फिडेंट नहीं होता, ठीक उसी तरीके से कि हर इंसान पैदाइशी सेंचुरी मारने के लिए पैदा नहीं होता। हर बैट्समैन पहले नेट प्रैक्टिस करता है, हर नेट प्रैक्टिस के साथ उसकी गेम इंप्रूव होती है और हर इंप्रूवमेंट के साथ उसका रन रेट इंप्रूव होता है। पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल एक स्पोर्ट की तरह है। आपका रन रेट, विच मींस आपका कॉन्फिडेंस, आपका सक्सेस, आपका इंपैक्ट, आपकी एफिशिएंसी हर प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होती है। जो पहली बार डर लगेगा उसके मुकाबले में दसवीं बार एक चौथाई कम डर लगेगा, बीसवीं बार उसका 10% कम डर लगेगा, पर वो डर खत्म हो जाएगा। वो भी बाय द वे कभी नहीं होता। आज भी अगर ये हमारे दो लोगों के बीच में ही चाहे एक वेबिनार है, पर ये ये कॉन्वर्सेशन मैं पहली बार आपके साथ कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ये सही नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस अभी भी है और ये भी कहीं ना कहीं डर अभी भी है कि हो सकता है कि पीयूष मुझसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब नहीं आए मुझे, फिर क्या होगा। तो ये सारे डर रहेंगे, ये खत्म नहीं हो जाएंगे, बट विद एवरी पास, एवरी आउटिंग ये इंप्रूव होते चले जाएंगे, विद एवरी प्रैक्टिस ये खुद इंप्रूव होते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस को लेके भी। तो इवन कॉन्फिडेंस इंप्रूव्स विद एवरी प्रैक्टिस। यू टू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ के दो चीजें हो सकती है ना, मौका आया, आपने मौका गवाया क्योंकि आपने उसको अपनाया नहीं, तो मौका गया। दूसरा कि मौका आया, आपको डर लगा, पर आपने फिर भी जाके जो आपसे बन पाया वो किया, तो एक तो मौका गवाया नहीं, दूसरा एक प्रैक्टिस और हो गई। तो जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस होती जाएगी उतना आप इंप्रूव होते जाएंगे। तो मौका मत गवाएं, उसको पोस्टपोन ना करें, मौके बनाएं, गलतियां करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर करें जरूर, जितना करेंगे उतना इंप्रूव होगा। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है।
Awesome. So, काफी कई चीज आपने, अच्छी चीज आपने शेयर की कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा हम जब प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी ज्यादा बार वेबिनार्स करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, स्पीकिंग गिग्स करेंगे, जो भी चीजें करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। पीयूष, बिफोर यू गो फॉरवर्ड सॉरी, बट आप अपने दर्शकों को अपने ही एग्जाम्पल के साथ ये बताएं कि आपने जब पहला, आई थिंक आप कहते हैं आप, उसमें आपका जो मेंटल फीलिंग है कॉन्फिडेंस को लेके, वो ये मानना सही होगा कि आज बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट 1-2-3.
जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल. मैं पहला पॉडकास्ट जो मेरा 2 साल पहले था 2018 में, तो काफी वो मैंने बहुत बार रिकॉर्ड किया था, अराउंड 40-50 बार मैं बोल सकता हूँ मैंने रिकॉर्ड किया, डिलीट किया, रिकॉर्ड किया. उसमें फंबल हो रहा था, बहुत अटक रहा था, नर्वस. बट अभी ऐसा नहीं बोल सकता आई एम बेस्ट, बट आई एम धीरे धीरे जो आपने बोला इम्प्रूवमेंट हो रहा है.
You're doing a great job, and that's the whole thing. See, we are all, हम लोग सब एक improvement की journey पर हैं. हमारे level अलग अलग हो सकते हैं, पर सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, improve करते जा रहे हैं. हम चाहे जो भी public speaking, किसी भी तरीके की speaking करते हो, यही चीज मैं उन social media influencers या digital influencers को याद दिलाना चाहूंगा कि आप याद करेंगे जब आपने पहली बार अपनी तरफ कैमरा टर्न करके अपना पहला इंस्टाग्राम का 60 सेकेंड वाला वीडियो बनाया था, उसमें आपको शायद 75 रीटेक्स लगे होंगे. पर आप 100 ऐसे वीडियोस बनाने के बाद आज आपको 75 रीटेक्स की शायद जरूरत नहीं पड़ती, अब 15 रीटेक में हो जाता है.
जी,
कुछ लोग शायद एक ही रीटेक में कर लेते हो, कुछ लोग शायद रीटेक की जरूरत ही ना पड़ती हो. बट याद सिर्फ ये रखें कि पहली बार उतना आसान नहीं था जितना आसान अब है. इट इज द सेम थिंग वी टॉकिंग ऑन अ स्टेज, इट इज द सेम थिंग वी टॉकिंग इन अ वेबिनार. जितना ज्यादा फेमिलियरिटी बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.
ऑसम, ये सही चीज बताई आपने कि प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. ऐसा हो गया कि मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा, दरवाजे पे तो नॉक नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस आ गया आपके अमेजोन से.
बिल्कुल
ऐसा नहीं होगा, खुद को बिल्ड करना है. सो दैट वाज अ ग्रेट एडवाइस, प्रैक्टिकल एडवाइस थी ये बहुत. तो एक चीज ये भी थी कि आपने जैसे कि शेयर किया था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल्सो we can talk about facial expression bhi important role play karte hai, kabhi humko kaisa expression dena. to iske bare mein a quick tip, main zyada time nahi lunga kyunki topic hi bahut lengthy hai. jaise ki maine audience ko bataya lengthy topic hai to inke lengthy webinar mein aapko milega, to wahan aap ja sakte ho. podcast is an introduction for you. yeah ji bataiye facial expression and about body language.
so Piyush, aapka body language वॉइस मॉड्यूलेशन की तरह, वॉइस मॉड्यूलेशन में 7 हिस्से होते हैं, उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ सब पार्ट्स हैं जो मिला के बॉडी लैंग्वेज बनता है. एक तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है. फेशियल एक्सप्रेशन में ही 2 पार्ट्स और हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट है, आपका स्माइल है. सिमिलरली द रेस्ट ऑफ योर बॉडी एज बॉडी पॉस्चर. पॉस्चर इज जो आप अपनी पीठ के साथ करते हैं. अगर आप सीधा बैठे हैं तो दिस इज गुड पॉस्चर, अगर बहुत लो के बैठे हैं तो दिस इज बैड पॉस्चर. तो पॉस्चर जितना स्क्वायर्ड आउट होगा उतना आपकी बॉडी लैंग्वेज impressive mani chahti. Then are your gestures or gestures. Gestures and gestures. Okay? Okay. Gestures and gestures. Peeche koi coffee bana raha.
Yeah, no worries.
So, gestures and gestures is what you do with your hands. So third is your hand movement, right? Fourth part of your body language is, are you going to stand and talk? Are you going to sit and talk? So jo aapka stance hai, chahe wo sitting mein ho, chahe standing mein ho, वो कहते हैं कि टी बनाना बहुत जरूरी है. मेक टी, सो व्हिच मींस जितना आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाए, शोल्डर स्ट्रेट, और जितना ज्यादा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाए, बैक स्ट्रेट, जितना आप सीधा खड़े हो या सीधा बैठे उतना आपका बॉडी लैंग्वेज और इम्प्रेसिव दिखेगा. जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ वो मैं ऐसे अगर बोलूं तो शायद उसका जो इम्पैक्ट है वो कम लगेगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी एनर्जी कम लगेगी. और जैसे ही मैं स्क्वायर आउट होके बोलता हूँ तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है. तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, योर स्टांस एंड योर जेस्चर्स, व्हाट यू डू विद योर हैंड. तो 2 चीजें जो इमीडिएटली हर वो इंसान जो डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग करता है जो इमीडिएटली कर सकता है, एक तो अपने आपको याद दिलाया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है. जितना हमारा आई कॉन्टैक्ट होगा उतना हम अगले इंसान को इंगेज्ड रख पाएंगे. दूसरी चीज जो बहुत लोग नहीं करते और एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो करना, वो ये है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हाथों के साथ क्या करना है. राइट, लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज बिकॉज दे डोंट नो कि हाथों के साथ क्या करना है, वो हाथों को फिर यूज ही नहीं करते. क्योंकि ये ना कि यार कुछ गलत करो उससे अच्छा है कि करो ये मत, इसलिए फिर बहुत लोग उसको यूज ही नहीं करते. पर हमको कहीं ना कहीं अपना को याद दिलाना है कि जब 2 दोस्त आपस में बात करते हैं तो उनके हाथ हिलते हैं, जब आप अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हो तो आपके हाथ हिलते हैं. नेचुरल है हर इंसान के लिए कि जब वो बात करे तो उसके हाथ हिले. तो फिर जब हम एक स्क्रीन पे भी अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम नेचुरल हैं, तो नेचुरल कैसे लगेगा अगर हाथ नहीं हिलेंगे तो हाथ हिलना जरूरी है. ओनली रूल विद हैंड्स इज दैट जैसे आपने भी अपना फ्रेम जो बनाया हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा भी हाथ ऊपर करो तो दिखाई देंगे. तो एक तो अपना फ्रेम ही इस तरीके से बनाया कि हाथ हिलते हुए जब भी हिले नजर आए. अगर मैं बहुत क्लोज रखूंगा फ्रेम को तो हाथ नहीं नजर आए. तो एक तो फ्रेम ऐसा बनाया कि हाथ नजर आए. दूसरा, हाथों को जितना एक दूसरे से अलग रख सके उतना अच्छा है. हाथ एक साथ जितना कम आए उतना अच्छा है. हाथ मुंह पे जितना कम जाए उतना अच्छा है. तो हाथ हिले और अलग हिले एक दूसरे से. कभी कभी एक ही हिलेगा, कभी कभी दूसरा हिलेगा, कभी कभी दोनों हिलेंगे. पर एक तो उनका हिलना जरूरी है, दूसरा उनका अलग होके हिलना जरूरी है. सो इवन इफ यू वर टू जस्ट रिमेंबर दीज टू स्टेप्स, बिलीव मी, आप देखें अगेन, आप टोनी रॉबिन्स को देखें, आप गैरी वी को देखें, आप एलन डी जेनरस को देखें, आप किसी भी अच्छे स्पीकर को देखें, आप देखेंगे कि उनके जब वो जब बात कर रहे थे उनके हाथ हिलते हैं. तो वो इज द सेकंड टिप. आई कॉन्टैक्ट जेस्टर्स आर इम्पोर्टेंट इवन इन डिजिटल पब्लिक स्पीक.
ऑसम,
दैट हेल्प्स.
या बहुत अच्छी आपने टिप बोली कि मैं तो अभी मतलब मन ही मन सोच रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें होती है पब्लिक स्पीकिंग में, डिजिटल स्पीकिंग में. मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, वेबिनार्स भी करता हूँ, तो इतनी सारी चीजें मेरे को पता भी नहीं कि इतनी सारी चीजें होती होगी. लाइक जो आपने बोला ये साइंटिफिकल बात है, लाइक इसके पीछे एक साइंस है, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो कैसे हम बात करते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, एक्सप्रेशन हो. जैसे कि अभी मैं ऐसे कर रहा था, अभी आपके बोलने का नहीं भी शुरू हो गया, अभी इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू हो गया. आज से इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होगी. जैसे आपने बताया कि हम कभी क्या करेंगे, पर गलती हमको करनी है. मौसम मौसम, तो मेरे को भी, मेरा भी अभी धीरे धीरे यू नो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. शायद मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँ नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट में, आने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में. और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपने जी, या सॉरी, प्लीज गो अहेड.
But bro, Piyush, what I like about what you're saying, आप जो बोल रहे हो, जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि हमें कभी कभी ये लगता है कि मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग का लेवल है अब वो जितना है उतना ही रहे तो भी ठीक है. पर आप ये देखो कि कुछ पब्लिक स्पीकिंग में बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, वो जैसे ही आपको समझ में आ जाते हैं उनको कभी कभी प्रैक्टिस करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. बस आपके जहन में बैठ जाए तो आप उनको यूज करना शुरू कर पाते हो. और जब आप उनको यूज करते हो तो आपका 10% 15% 20% इम्पैक्ट अगर बढ़ता है तो क्यों नहीं. तो इनफैक्ट पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज करना आपके इम्पैक्ट को बढ़ाएगा, पर उनको यूज करना सीखना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अब जैसे ये हाथ हिलाने वाली बात है, वो सिर्फ याद रखने वाली बात है. याद रह गई तो आप याद है, आप हाथ हिलाओगे, पर इसमें कोई सीखने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो इसमें से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और बहुत जल्द सीखा जा सकता है.
या और वो प्रैक्टिस की बात है, अगर एक बार हम प्रैक्टिस कर ले तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि ऐसे ऑटोमेटिक होगा. जैसे गाड़ी चलाते ब्रेक की तरफ फेर जाता है, जब भी हम प्रैक्टिस हो जाती है, न्यू होता है तो हम ध्यान ब्रेक की तरफ फेर जाता है. ऑसम, बहुत अच्छे. तो आपने आज अभी जो भी आपने टिप्स शेयर की उससे हमको पब्लिक स्पीकिंग की नॉलेज तो आगे डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग बनना है. नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जो कि लिसनर्स और व्यूअर्स देख रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा, कि अभी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रहे हैं, कि जो स्पीकिंग गिग्स होती है जो आपको मिलती है. मैं देख आपको फॉलो करता हूँ हर महीने. अभी तो ठीक है COVID-19 आप वो तो बात अलग कि हम ऑफलाइन जा नहीं सकते, फिर भी आप वेबिनार्स कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की, पब्लिक स्पीकिंग गिग्स कैसे रहे, ये मेरा क्वेश्चन होगा.
पीयूष, आज से एक साल पहले अगर आप मुझसे सवाल पूछते तो इसका जवाब शायद मेरे पास भी नहीं होता. क्योंकि आज से एक साल पहले तक, डेढ़ साल पहले तक मैं जितना भी काम कर रहा था वो सारा काम हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के रेफरल से आता. कहने का मतलब ये कि आज मैंने एक कंपनी के साथ ट्रेनिंग करी, उनको मेरी ट्रेनिंग पसंद आई, तो उन्हीं के HR हेड या उनके CEO या उनकी लीडरशिप में से किसी ने हमारा रेफरल उनके किसी और दोस्त को पास ऑन किया जो किसी और कंपनी के ओनर हैं या लीडर हैं. तो उन्होंने बोला कि भाई हमको इनसे रेफरल मिला है, आप हमारे लिए भी ट्रेनिंग कर. तो रेफरल वॉज द वे दैट वी वर वर्किंग, बट वी नेवर प्रोएक्टिवली, हमने खुद जाके कभी मार्केट में या डिजिटल रूट के थ्रू अपने आप को पिच करके बिजनेस नहीं लिया. पर पिछले 18 महीनों से एंड ज्यादातर पिछले एक साल से हमने अपना फोकस थोड़ा चेंज किया. पहले कंपनी जो थी वो सिर्फ व्हाइट लैडर के नाम से थी. व्हाइट लैडर में हम सारा काम क्लाइंट्स कंपनीज के साथ करते हैं, B2B बिजनेस है, वो अभी भी चलता रहेगा, पर जो साल भर पहले हमने बी टू सी की तरफ शिफ्ट किया अपना फोकस, वो हमने चेंज किया ओपन ब्रैकेट्स के साथ, दैट इज द अदर कंपनी दैट आई हैव को-फाउंडेड. एंड वी रियलाइज के बी टू सी बिजनेस जहां पे आपको कोई नहीं जानता, वहां पे फिर रेफरल्स सिर्फ काम नहीं आएंगे, वहां पे आपकी विजिबिलिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, जरूरी है. तो मेरा सबसे बड़ा कहने का मतलब है कि दो चीजें होनी चाहिए आपको आगे से अपॉर्चुनिटी मिले. मैं एक जमाने में सिनेमा मार्केटिंग करता था, तो सिनेमा मार्केटिंग के टाइम पे हम बोलते थे गुड प्रोडक्ट प्लस गुड मार्केटिंग इज इक्वल टू अ हिट फिल्म. तो दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है. कभी कभी आप देखते हो कि कुछ कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत सॉलिड होती है, और आप जाके वेबिनार या ट्रेनिंग अटेंड करो, बोले ये क्या था यार, ये तो फुसकी बॉम्ब था. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम कोचेस एंड ट्रेनर्स हु आर वेरी वेरी गुड, बट व्हाट दे लैक इज मार्केटिंग. तो आई थिंक हर वो इंसान जो चाहता है कि उसको स्पीकिंग गिग्स और अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको अपनी ये दोनों चीजें इंप्रूव करनी जरूरी है. एक तो अपना प्रोडक्ट शार्पन करें उस हद तक कि अगर आपके पहले मार्केटिंग पिच में 5 लोग आए, तो 5 के 5 लोग कम से कम ये कन्विंस होके जाए कि आपकी जो ऑफरिंग है वो सॉलिड है. वो ऑफरिंग खरीदे ना खरीदे इज अ सेकेंड थिंग, पर जो भी आपकी बात सुने उसको ये पता हो कि भाई हाँ ये एक्सपर्ट तो है अपनी बात को लेके, अपने मामले में एक्सपर्ट है. एक वो प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है. दूसरा, अब प्रोडक्ट मार्केटिंग के तरीके बहुत हैं, एंड आपको वो तरीके मुझसे बेटर पता है बिकॉज यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड डिजिटल वर्ल्ड बेटर देन आई डू, एंड आजकल एवरीथिंग इज डिजिटल. अगर आप मुझसे पूछें कि यू नो वेयर डू यू गेट स्पीकिंग गिग्स फ्रॉम, आई वुड से इट इज अबाउट योर डिजिटल विजिबिलिटी. पर ये आप भी मानेंगे कि सिर्फ विजिबिलिटी काम की नहीं होती, वो क्रेडिबल विजिबिलिटी होना जरूरी है. तो जितना ज्यादा हम थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट्स क्रिएट कर पाए अपने लिए, जितना ज्यादा हम थर्ड पार्टी कोलैबोरेशंस क्रिएट कर पाए अपने लिए, मैंने इन बातों पे कभी पहले ध्यान नहीं दिया था पीयूष, पर पिछले एक साल में मुझे एक ये चीज जो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है वो ये आई है कि आप अपने बारे में जितना बोलो लोग उतना कम मानेंगे, कोई और आपके बारे में बोले तो लोग उस पर विश्वास ज्यादा करेंगे. तो somebody else says कि भाई ये अच्छे स्पीकर हैं, तो उनकी बात ज्यादा मानेंगे वर्सेस अगर मैं कहूं कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूं. तो अगर हमें स्पीकिंग गिग्स अपनी बढ़ानी है तो हमारे को अपना थर्ड पार्टी इंडोर्समेंट बढ़ाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स, रेफरल्स. और रेफरल मेरे जैसा नहीं कि मिल गया और आपने उसके बारे में किसी को बताया नहीं, वहां पे फिर विजिबिलिटी काम आती है कि आप अपने सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करते हैं कि जो रेफरल आपको मिला वो 10,000 और लोगों को दिखाई दे. राइट, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स. वन, मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट. डोंट गो टू मार्केट अनलेस योर प्रोडक्ट इज 100 on 100. नंबर टू, वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, क्रिएट क्रेडिबल विजिबिलिटी, नॉट जस्ट विजिबिलिटी फॉर द सेक ऑफ विजिबिलिटी. मैं कहता हूं आज आई थिंक हर इंसान इतना हद तक स्मार्ट हो गया है कि उसको पता है कि जब वो आपके इंस्टाग्राम पेज पे आता है और वहां पे देखता है कि 5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वो सिर्फ उसी वजह से साइन अप नहीं करता. आज आपकी फॉलोअरशिप की क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका आपके साथ इंगेजमेंट कितना है, उन चीजों से ज्यादा फर्क पड़ता है. तो इंगेजमेंट बढ़ेगा सिर्फ तभी जब वो क्रेडिबल होगा. तो आपकी जो ऑफरिंग है वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक क्रेडिबल नहीं होगी. तो उस पे जितना हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए उतना करें, बिलीव यू मी. उसके बाद आई थिंक 80-20 गेम बन जाती है. 80% प्रोडक्ट एंड क्रेडिबिलिटी, 20% विजिबिलिटी. नहीं तो ज्यादातर लोग 80% विजिबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, फ्री गिग्स मिल जाएंगी, पेड गिग्स नहीं मिलेंगी. पेड गिग्स मिलेंगी जब क्रेडिबिलिटी एंड प्रोडक्ट इज 80 एंड विजिबिलिटी इज 20.
Awesome. तो ये बहुत अच्छी आपने जो बात कही कि काफी लोग जहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि विजिबिलिटी बढ़ाने में चले जाते हैं, वो विजिबिलिटी बढ़ाते ही रहते बढ़ाते, और वेदर फोकसिंग ऑन अवर ओन प्रोडक्ट और क्रेडिबिलिटी क्या है एग्जैक्टली. चाहे हमारी हमारा विजिबिलिटी 20% हो, पर ऐसे 20% में भी हमको वो और क्लाइंट्स ला के दे, या मे बी और स्पीकिंग गिग्स या वर्कशॉप या जो भी चीज़ें होती है वो ला के दे, और हमारी क्रेडिबिलिटी क्योंकि 80%. तो बहुत अच्छी मुझे एडवाइस लगी, काफ़ी लिसनर्स को भी बहुत अच्छी एडवाइस लगी होगी कि हमको अपने आप पे पहले काम करना, फिर हम विजिबिलिटी पे धीरे धीरे बढ़ाते जाए बढ़ाते, बट हम प्राइमरी फोकस शुड बी अवर प्रोडक्ट. Awesome. तो काफी अच्छा लगा.
एक चीज और पीयूष, एक चीज और, एंड आई थिंक दैट कुड बी द लास्ट थिंग दैट आई ऐड टू दिस. आई थिंक बोलते तो बहुत लोग हैं इस बात को, पर रीसेंट टाइम्स में इसका एक प्राइम एग्जांपल गैरी वी है, अगर आप देखें एक तरीके से. तो कहने का मतलब है कि उन्होंने शायद 2017 में किसी टाइम पे बोला था, गिव 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 आस्क.
यस एग्जांपल.
तो आप पांच बार अगर बिना सोचे दिल से किसी को कोई चीज देते हो, तो फिर छठी बार उनसे कुछ मांग सकते हो. सो आई थिंक एनीबडी हू इज अ स्पीकर, कोच, ट्रेनर, इन्फ्लुएंसर और एस्पायर्स टू बी वन, हम सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात जरूर होनी चाहिए कि जितनी बार हम कोई भी विजिबिलिटी क्रिएट करेंगे ये सोच के कि यार इससे पेड गिग मिलेगा क्या, तो चांसेस ऑफ गेटिंग पेड गिग विल बी लेस. पर अगर आप मन से अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंचाओगे, मन से, ये दिमाग में डाले बिना कि यार इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है थोड़ा सा लेट आए, पर आएगा चौगुना. तो जेन्युइनली गिव इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ गेटिंग पेड गिग्स एज वेल.
दूसरी बार मुझे उससे कुछ मांगना है या मुझे कुछ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उसके बिना भी हम उनको अगर वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो श्योर लेट आएगा पर हमको जरूर मिलेगा. ऑसम, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी और थैंक यू सो मच. आपने बहुत बहुत सारी चीजें शेयर की, मैंने खुद ने बहुत चीजें यू नो ध्यान में रखी है और इसको सुनने का मैं रिटर्न नोट्स भी दूंगा. डिजिटल पब्लिक स्पीकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे होता है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने बताए, जैसे आपने बताया वॉइस मॉड्यूलेशन, उसकी भी आपने सात चीजें बताई, साथ में से आपने एग्जांपल भी दिया एक का, और आपने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, बहुत सी चीजें आपने बताई. ये पॉडकास्ट एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पॉडकास्ट एपिसोड होगा, आई कैन से दिस. थैंक यू सो मच विराज फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग अमेजिंग टिप्स ओवर हियर ऑन माय पॉडकास्ट.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच एंड लेट्स कीप टॉकिंग.
Yeah, yeah. Let's keep talking. Thank you so much.
Perfect. Yeah. You take care.
Yeah. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड. अगर आपने एपिसोड यहाँ तक सुना है और अब तक आप ये सुन रहे हो तो आपके लिए मैं कुछ गिफ्ट लाया हूँ. आपने अगर एपिसोड अब तक सुना है तो आपको मिलेगा फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन कॉल मेरे तरफ से. जी हाँ, जो कि मेरा कंसल्टेशन कॉल पेड होता है बट आपको फ्री मिलेगा. बट आपको ये कुछ छोटे से स्टेप्स फॉलो करने, आई एम श्योर आप वो स्टेप्स पक्का फॉलो करोगे अगर आपको मेरे साथ 15 मिनट का फ्री वन ऑन वन कॉल चाहिए, जूम कॉल और इंस्टाग्राम कॉल. तो आपको बस क्या करना है, जहाँ पे भी आप एपिसोड को सुन रहे हो, इंस्टाग्राम सॉरी आप सुन रहे होंगे स्पॉटीफाई पे, anchor.fm पे, एप्पल पॉडकास्ट पे या iTunes पे, जहाँ पे भी आप सुन रहे हो आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पे भी आप सुन रहे हो. आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी और आपको थ्री लर्निंग शेयर करनी है, थ्री या एक लर्निंग या दो लर्निंग, जो भी है, जितनी भी आपने चीज़ें सीखी है, बस आपको मेंशन करना है कि आई हैव लर्न दिस दिस थिंग फ्रॉम दिस एपिसोड. और मुझे टैग कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @thepiyushkukreja, theepiyushkukreja, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो गया, वो भी देख सकते हो. मुझे टैग करो और उसके बाद मुझे मैसेज करो, आपको मिलेगा फ्री वन ऑन वन कॉल विथ मी, 15 मिनट वन ऑन वन कॉल विथ मी. आप मेरी स्टोरीज भी देख सकते हो, पिछली स्टोरीज में रोज किसी न किसी के साथ, रोज दो या तीन लोगों के साथ मैं कॉल कर ही रहा हूँ. तो अगर आप ये मौका, और ये ज़्यादा दिन तक वैलिड नहीं होगा ये एपिसोड अगर सुन रहे हो, तो यू आर द लकी वन. सो जस्ट जाइए इंस्टाग्राम पे, टैग कीजिए, अपनी लर्निंग शेयर कीजिए और आपको मिलेगा 15 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन कॉल बाय पीयूष कुकरेजा एंड मे बी मोर एक्साइटिंग प्राइजेस. जस्ट आपको टैग करना है. एंड गाइस, जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर शाम के 6 बज रहे होंगे तो समझ जाना द पीयूष कुकरेजा शो का न्यू एपिसोड आ चुका होगा. सो बाय बाय, टेक केयर.